समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सावन का महीना हो, तीज का त्योहार हो और साथ में हो तीज का गीत, तो मन तो झूमेगा ही। आज हरियाली तीज का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसी तिथि को श्रावणी तीज भी कहते हैं। वैसे आम जनमानस में इसे हरियाली तीज का ही नाम दिया गया है। मुख्य रूप से ये महिलाओं का त्योहार है। इस समय जब प्रकृति चारों ओर हरियाली की चादर सी बिछा देती है, तो प्रकृति के इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। जगह जगह झूले पड़ते हैं और महिलाओं के समूह गीत गा गा कर झूला झूलते हैं।
रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन, रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावन आयो, आयो आयो तीज तिहार रमुशा
रविवार की नई सुबह, नया दिन और ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ साथ में समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे में तीज त्योहार की प्रारंभिक जानकारी के साथ। आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और सायरा मुज्तबा। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
Namaskar, Radhav, and a very warm welcome to all our listeners to this weekend edition of Aaj Savere. और जाहिर सी बात है, सावन के झूले लग गए हैं, सावन भी अपने शबाब पे है, तो क्यों ना आप उसका लुत्फ उठाएं और खास तौर से सुनिए हमारे शो को। Of course, Ravi is here on a Ravivar, as he said. So well, we are going to present the show for you in which we have an amalgamation of news reports and the latest headlines, and also of course our segment, the Metro News segment, in which we bring the what stories the cities are going to have, ताकि जाने कि आपके अपने शहर में क्या कुछ खबरें हैं, and the last segment that we all wait for is of course in which we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays today. और आज तो काफी ही दिलचस्प शख्सियत को याद करेंगे, isn't it?
बिल्कुल, और आपको तो देखकर आज लग रहा है कि आपने तो तीज त्योहार के कुछ खास ही तैयारियां कर रखी हैं।
वेल, मेरे ख्याल से हर औरत करती है, यही बहाना मिल जाता है, यू नो, औरतों को श्रृंगार करने का, सजने का, सवरने का, बिकॉज अदरवाइज दे आर जस्ट प्रॉब्ली नी डीप इन हाउस होल्ड चोर्स और द वर्क लाइफ। सो ऑफकोर्स ये एक मौका मिल जाता है हरियाली तीज पे एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हंसी गुल्ला करने का। ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट हेडलाइंस।
बिल्कुल, शुरू कर देते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
Prime Minister Narendra Modi yesterday inaugurated the new terminal building of the Tuticorin Airport and also laid the foundation for projects worth 4,800 crore rupees in Tamil Nadu after returning from Maldives. Spread across 17,340 square meters, the terminal will be equipped to handle 20 lakh passengers annually. In railway infrastructure, the Prime Minister inaugurated the electrification of the 99-kilometer Madurai-Bodinayakkanur line. He also inaugurated the 650 crore rupees doubling of the 21-kilometer Nagarkoil town Kanyakumari section. Additionally, the doubling of the Aralvai-Mori-Nagarkoil junction and Tirunelveli-Melappalayam sections. Addressing people on the occasion, Prime Minister Modi said, Tamil Nadu is witnessing unprecedented development, which reflects the centre's resolve to make the state a driving force of Viksit Bharat.
4,800 crore rupees ke projects ka lokarpan aur shilanyas kiya gaya hai. Inme airport, highways, ports aur railways ke projects hai. Aur power sector se jude aham initiative bhi hai. तमिलनाडु की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
The Prime Minister said over the last 11 years, his government focused on infrastructure and energy sectors, as these are the backbone of any state's development.
Infrastructure or energy, ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बैकबोन होते हैं. इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है. आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भाग लेंगे. श्री मोदी गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवतिरई महोत्सव में भी शामिल होंगे. प्रधानमंत्री भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे. ये विशेष उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के पौराणिक समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने और चोल वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रतिष्ठित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का भी स्मरण कराता है.
Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 AM today. It will be the 124th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे हैं. अमरीका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में श्री मोदी को 75% रेटिंग मिली है. सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को विश्व में अपने समकक्ष नेताओं से बहुत आगे दिखाया गया है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग 59% रेटिंग के साथ दूसरे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर रहे. भारत ने सोमालिया के लोगों के लिए मानवीय सहायता की एक खेप भेजी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में 10 टन सामग्री है जिसमें आवश्यक दवाइयां, शल्य चिकित्सा उपकरण, अस्पताल की आवश्यक वस्तुएं और जैव चिकित्सा उपकरण शामिल हैं. उन्होंने ये भी बताया कि भारत सोमालिया को मानवीय सहायता जारी रखे हुए है.
And now moving on to the world of sports, in chess, first game in the final of the FIDE Women's World Cup 2025 between Kuneru Hampi and fellow Indian Divya Deshmukh ended in a draw in Batumi, Georgia last evening. Both the players got 0.5 points after this draw. Game 2 of the final will be played today. We have a report.
In chess, first game in the final of the FIDE Women's World Cup 2025 between Kuneru Hampi and fellow Indian Divya Deshmukh ended in a draw in Georgia last evening. Divya was playing with the white pieces while Kuneru was on the board with black. Both the players got 0.5 points each after this draw. Game 2 of the final will be played today. The All-Indian clash guarantees a spot in the next year's FIDE Women's Candidates Tournament. On to cricket, India will resume their second innings at an overnight score of 174 for 2 against host England on the last day of the fourth test of the Anderson Tendulkar Trophy at Old Trafford in Manchester today. Captain Shubman Gill not out at 78 and KL Rahul unbeaten at 87 gave India a glimmer of hope as England took a massive 311 run lead on day 4 last night. At stumps, India is still trailing from the host by 137 runs. Meanwhile, the Asian Cricket Council ACC yesterday announced the detailed fixtures for the upcoming Men's Asia Cup 2025. The tournament will take place from September 9 and will likely conclude on September 28 with Dubai and Abu Dhabi as the likely venues. India, Pakistan, UAE and Oman are placed in Group A, while Group B comprises of Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan and Hong Kong. India and Pakistan are set to meet in the group stage clash on September 14. In badminton, Indian men's doubles pair of Swastika Sairaj and Chirag Shetty bowed out of the China Open 2025 after a straight game defeat to Malaysia's world number 2 duo Aaron Chia and So Woo Yeek in the semi-finals yesterday. The Indian pair, ranked world number 3, lost 13-21-17 2021 in a 42-minute contest. With Bimal Mohapatra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं सायरा मुज्तबा।
Thanks, Ravi. Let's start with Shahar Chennai. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, who has been under medical care at a private hospital in Chennai since 21st of July, is expected to be discharged today, according to sources close to the hospital. The Chief Minister was admitted after he experienced a sudden spell of giddiness during his routine morning walk. Doctors conducted a series of diagnostic tests, including an angiogram, to determine the cause of the symptoms. Indian Railways successfully tested the country's first hydrogen-powered train coach at the Integral Coach Factory, or ICF, Chennai. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav announced this in his social media post. India is developing 1200 HP hydrogen train. This will place India among the leaders in hydrogen-powered train technology. The initiative marks a significant leap in India's sustainable rail transport mission. The Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board announced a temporary suspension of piped water supply in zones 7 to 13 and parts of Tambaram Corporation from 30th July to 1st of August. This is due to the interconnection work delaying the full-scale delivery of 530 million litres of water per day from the Chembarambakkam water treatment plant. And the 6th Indian Abacus Olympiad, a math and skill development competition, was held at Chennai. A total of 2,500 students had registered for their participation in the competition at different levels. The event comprised 6 batches of 480 students each who took part in the exam. 1/4 of the students who participated got near to winner prizes based on the ranking they attained, along with gift items. Moving on to Bengaluru, Bangalore Political Action Committee submitted a project report to Bruhat Bengaluru Mahanagaripalika yesterday on how 7.5 kilometer stretch of inner ring road in Bengaluru was transformed. The Chief Commissioner of the Municipal Corporation, Maheshwar Rao, received the report prepared by the committee, which is a non-partisan, non-profit organization that aims to improve governance in Bengaluru. The initiatives helped decongest the inner ring road from Indiranagar KFC Junction to Madiwala Masjid in Koramangala. And moving on to the city of Hyderabad, DRDO Chairman Dr. Samir V. Kamat urged the scientists to work towards quick induction of weapon systems undergoing user trials. Dr. Kamat emphasized that DRDO should concentrate on the development of more agile, stealthier and faster missiles, such as hypersonic missiles, to counter threats from advanced air defense systems. The DRDL organized a one-day workshop on weapons systems, including Akash Air Defense, BrahMos, MRSAM and ULPGM, that played a stellar role in Operation Sindoor at the missile complex in DRDL Hyderabad yesterday. The workshop deliberated on the performance of these indigenous systems and discussed the ways and means to further enhance the system's capabilities. DRDL Director Dr. G.A. Srinivasamurthy and veterans involved in weapon system development also participated in it. So, Ravi, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad.
जी.
What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
भाई, मेरे पास भी बहुत से समाचार हैं इन्हीं मेट्रो से, तो शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र स्थित पीतमपुरा के विभिन्न ब्लॉकों में जन उपयोगी परियोजनाओं का उद्घाटन और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रों से निकलने वाली मुनक नहर के ऊपर जल्द ही एलिवेटेड कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा, जिसके पूरा होने के बाद इलाके के लोगों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा के कई ब्लॉकों में 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित नई सीवर लाइन के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। पर्यटन मंत्रालय राजधानी के जनपद स्थित भारत पर्यटन कार्यालय में कल सोमवार को तीज महोत्सव का आयोजन करेगा, जिसमें भारतीय विरासत के रंगों, परंपराओं और भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव में आगंतुक राजस्थानी लोक नृत्य, बंगाल के स्वादिष्ट व्यंजन, मेहंदी आर्ट और उत्तर भारत के प्रसिद्ध खानपान के साथ ही घर सजावट के सामानों का आनंद ले सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने बताया है कि तीज महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व मानसून के आगमन और देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन का भी प्रतीक है। ये त्यौहार अपने पारंपरिक संगीत, नृत्य, मेहंदी, झूलों, उत्सवी परिधानों, स्वादिष्ट व्यंजनों, समृद्धि और खुशियों के लिए जाना जाता है। वैसे सायरा, दिल्ली सरकार ने भी 25 से 27 जुलाई तक यानी आज तक तेज महोत्सव का आयोजन किया हुआ है और इस महोत्सव का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, संस्कृति समृद्धि और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली हाट पीतमपुरा में हो रहा है। महोत्सव में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर पारंपरिक हस्तक्षेप, हथकरघा और व्यंजनों की विविधता का प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं और युवतियों के लिए मेहंदी डिजाइन, बिंदी सजावट और रंगोली जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 तारीख को पहले ही कर दिया है। तो आज संडे का भी दिन है, आप जा सकें जरूर जाइएगा, परिवार के साथ आनंद जरूर लीजिएगा।
बिल्कुल,
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कपड़ा उद्योग में सौर ऊर्जा को अपनाने में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए कपड़ा और ऊर्जा विभागों के बीच एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया है। ये निर्देश मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में आयोजित कपड़ा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के अंतर्गत नई सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समान मानदंड की आवश्यकता पर बल दिया। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को दक्षिण बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है, यानी ये जो प्रेडिक्शन की है वो आज के लिए की गई है। अगले 5 दिनों तक यही स्थिति रहेगी और अगले हफ्ते सोमवार से यानी कि कल से कुछ जिलों में बारिश बढ़ सकती है। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और सायरा के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता की अगर बात करें सायरा, तो सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
सो वी कैन से रवि दैट मॉनसून अपने शबाब पे पहुंच चुके हैं पूरे इंडिया में। हाउएवर जो सावन की झड़ी होती है, दिल्ली वालों को अभी तक उसका इंतजार है। सो होपफुली इन द डेज टू कम प्रोबब्ली वी विल एक्सपीरियंस दैट एज वेल।
भाई अभी तो पूरा अगस्त का महीना बाकी है।
राइट राइट। एंड वेल इफ वी टॉक अबाउट द सिटीज डाउन साउथ, चेन्नई विल बी हैविंग अ पार्टली क्लाउडी स्काई. Minimum temperature was 28, while maximum will be around 35 degrees Celsius. There will be some light rain and a cloudy sky in Bengaluru. The temperature in Bengaluru will hover between 20 and 27 degrees Celsius. And again, Hyderabad too will have some light rain or drizzle today. So, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा नहीं होगी हैदराबाद बेंगलुरु में. And the temperature in Hyderabad will hover between 22 and 27 degrees Celsius.
और सायरा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और इतिहास के पन्नों को पलटें, हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं कि आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है।
That's right, and initially established as the Crown Representatives Police on this date in 1939, after escalating political turmoil and unrest within the princely states, the CRPF has evolved into one of the oldest and most distinguished central paramilitary force in the country. Post-independence, CRPF underwent a significant transformation. On 28th of December in 1949, through an Act of Parliament, it was renamed as the Central Reserve Police Force. So we probably now know, and if the listeners didn't know, they now know, of course, through our show, that CRPF jo hai, bahut purani hai. It was probably in the 1930s, jab se hai.
Ji, ji, ji.
Today is also a very important day, and it's Parents' Day today. That is observed today, and this day honors the vital role of parents in shaping future generations. It is celebrated every year on the fourth Sunday of July. The day shows that the connection between a parent and a child is timeless, cherished and priceless. So of course we all know what you know, unka kehte nahi unki hasti parents ki namak ki tarah hoti hai ki yun to ehsaas nahi hota, unki qadr nahi hoti, lekin jab nahi hota hai khane mein namak tab aapko lagta hai are kahan hai sara swad. So that is the role that parents play in our lives, and we should probably cherish each and every moment of you know, being with our parents and of being parents ourselves if we are. And I think Ravi, recently I read a very interesting report, Ravi, and that made me wonder about the wonders of God, nature, whatever you can call it. Why a mother feels so connected to a child?
Ji.
Because when the mother is carrying the child in the womb, some of the cells of the mother and the child, they get exchanged in that process. So a mother is always carrying a part of the child in her life. चाहे वो बच्चा डिलीवर हो चुका हो, एंड द चाइल्ड इज ऑलवेज कैरिंग सम पार्ट ऑफ द मदर इन 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 द ब्लड स्ट्रीम.
लेकिन ये तो भावनाएं हुई मदर की, माँ की, लेकिन क्या बच्चे भी इन भावनाओं को समझते हैं?
मैंने बताया ना, नमक की तरह होते हैं, जब तक होता है तब तक कद्र नहीं होती.
वैसे अभिभावकों की आपने बात की, यानी कि बुजुर्गों की, तो मुझे दो लाइनें याद आ गई बुजुर्गों के ऊपर कि हमारे घर में है बुजुर्गों से इतनी राहत, हमारे घर में है बुजुर्गों से इतनी राहत, दरख्त फल नहीं देते मगर साया
देते हैं.
तो हमें कद्र करनी चाहिए अपने बुजुर्गों की, अपने अभिभावकों की, अपने पेरेंट्स की.
एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली दीज डेज रवि, अगर जैसे एवरीबॉडी हैज बिकम प्रोफेशनल, सब लोग यू नो कपल्स आर, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, सो एक चलन चल गया न्यूक्लियर फैमिली का. फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मी बींग अ वर्किंग मदर, and I live with a joint family, and I think it's such a blessing because mujhe lagta hai main naukri hi na kar pati hai, bachchon ki wajah se mujhe chhodna padta apna career, if I was not having these buzzards and these elders in our family, you know.
aur in halaton mein nuclear family ki nahi joint family ki sabse zyada zarurat hoti hai. iske liye isko hame qadr karni chahiye.
Yes, absolutely. And if you remember some of the days that you know, the events that took place on this day, well, on this day in 1921, Surgeon Frederick Banting and medical student Charles Best, they successfully isolated the hormone insulin in experiments at the University of Toronto.
जी, 2006 में आज के दिन जो है रूसी प्रक्षेपण यान नेपर जमीन पर गिरा था.
And if we take you back to the year 1949, the world's first jet-propelled airliner, the British de Havilland Comet, made its maiden test flight in England. And also on this day in 1953, the Korean Armistice Agreement was signed, ending hostilities and establishing an uneasy ceasefire between North and South Korea.
और 2007 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने लगभग 40,000 साल पहले पाए जाने वाले विशालकाय जीव वोम्बैट के जबड़े का जीवाश्म मिलने का दावा किया था. तो ये थे इतिहास के कुछ तथ्य जो हमने अपने श्रोताओं के साथ बांटे, और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का. तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है भारत विद्या से संबंधित विषयों के प्रख्यात विद्वान राजेंद्र लाल मित्रा का, जिनका जन्म हुआ 16 फरवरी 1822 कोलकाता में और निधन हुआ 27 जुलाई 1891 को. राजेंद्र लाल मित्रा ने संस्कृत, फारसी, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी. इन्होंने अनेक ग्रंथ और रचनाओं का संपादन किया. राजेंद्र लाल मित्रा 25 वर्ष तक वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे. राजेंद्र लाल मित्रा अपनी कार्यवाही जीवन की पूरी अवधि में भारतीय वांग्मय की खोज और उसे पाठकों के लिए उपलब्ध कराने में लग रहे, और इनके द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं ओडिशा का पुरातत्व, बोधगया, शाक्य मुनि, छांदोग्य, उपनिषद, तैतरीय ब्राह्मण और आरण्यक, गोपत ब्राह्मण आदि. और अब बात करते हैं उस व्यक्ति की, उस सेलिब्रिटी की, उस कलाकार की जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है.
कितने आदमी थे
सरदार? दो आदमी थे.
दो आदमी, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए. खाली हाथ क्या समझ कर आए थे? के सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा. क्यों?
जी हाँ, ठीक पहचाना, ये थी अमजद खान साहब की आवाज, जिनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1940 हैदराबाद में और आपने इस फानी दुनिया से रुखसत ली 27 जुलाई 1992 मुंबई में।
That's right, रवि, जैसा आपने rightly कहा that उनकी आवाज ही पहचान है and I think this dialogue has become immortal and Amjad Khan made this dialogue immortal because whenever we in our parlance we probably you know want to ask somebody कितने लोग थे तो हम लोग उसी लहजे में बोलते हैं। So that is the magic of cinema and that is what actors do. And he worked in over 132 films in a career that spanned nearly two decades. He was the son of actor Jayant and he gained popularity for villainous roles in mostly Hindi films. The most famous of course being the character of Gabbar Singh in the magnum opus Sholay.
जी, और वैसे तो इन्होंने कई फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है सायरा, लेकिन पर्दे पर एक से एक खतरनाक और अत्याचारी भूमिकाएं निभाने वाले अमजद खान रियल जिंदगी में, वास्तविक जीवन में एक बहुत ही सभ्य, सुसंस्कृत और गरीबों की सहायता करने वाले नेक दिल इंसान थे। शोले के गब्बर सिंह की भूमिका मालूम है सायरा, उनसे पहले अभिनेता डैनी को दी गई थी, लेकिन समय की कमी के कारण जब उन्होंने इनकार कर दिया तो ये भूमिका अमजद खान साहब को मिल गई। और अमजद खान साहब ने डाकू गब्बर सिंह के चरित्र को फिल्मी पर्दे पर इस प्रकार से जीवंत कर दिया कि उसे अमर ही बना दिया।
रामगढ़ के वासियों, झांक कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब एकड़ी इनकी, सब एकड़ी आख थी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर।
वैसे सहरा, अमजद खान साहब ने हिंदी सिनेमा के खलनायक की भूमिका के लिए इतनी लंबी लकीर खींच दी थी कि आज तक उससे बड़ी लकीर कोई नहीं खींच पाया है।
That's very very true and we're remembering another fine actor of contemporary cinema and उनकी एक्टिंग भी कुछ अलग ही किस्म की होती है
जी।
And his delivery is very refined yet his expressions and everything I think they speak for themselves. We are talking about Rahul Bose today. It's his birthday and very few people know that he's also an athlete apart from being an actor. He works mostly in Hindi films and of course some fusion films that have been released. He's the president of the Rugby India team and he has appeared in Bengali films also such as Mr. and Mrs. Iyer, Kal Purush, Anuranan, Antaheen, Laptop and The Japanese Wife. And Hindi films like Pyar Ke Side Effects, Maan Gaye Mughal-e Azam, Jhankar Beats, Kuch Love Jaisa, Dil Dhadakne Do, Chameli and Shaurya among others. A very very fine actor. Let's listen to this beautiful song from one of his films.
Jaane kya chahe man baawara, jaane kya chahe man baawara, akhiyan mere saavan chala, akhiyan mere saavan chala, jaane kya chahe man baawara, jaane kya chahe।
और कार्यक्रम के अंतिम चरण में जिक्र भारत की प्रसिद्ध गायिका कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा का, जिनका प्रचलित नाम है केएस चित्रा या सिर्फ चित्रा। आपका जन्म 27 जुलाई 1963 तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। सायरा, मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था
आज से करीब
20 साल पहले।
लवली, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, दैट अ टाइटल दैट वाज बेस्टोड अपॉन हर बाय द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल इन लंडन In 2001.
जी, दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों की इस पार्श्व गायिका ने अपनी मधुर आवाज से लाखों लोगों का दिल जीता है। के एस चित्रा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगाली और उड़ीसा जैसी भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गाए हैं।
लहराया धरती का चल,
कहना ही क्या ये नैमिक अनजान से जो मिले चलने लगे।
और सायरा, के एस चित्रा को वर्ष 2021 में पद्म भूषण से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। वेल, चलते चलते आज का विचार कि जिंदगी क्या है ये मत पूछो, संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और सायरा मुज्तबा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
नमस्कार
नमस्कार।